नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओ तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
धन्यवाद अतहर भाई, और सभी श्रोताओं को दीपावली की ढेर शुभकामनाएं।
बिल्कुल, लाज रोशनी का त्यौहार दीपावली है, तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल से मुंबई में। हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट कल से शुरू। भारत के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान। कुश्ती में मानसी अहलावत ने सीनियर्स विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, और भारत ने कनाडा को 168-84 से हराकर विश्व ब्रिज खेलों के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शुरुआत क्रिकेट से करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल से मुंबई में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दो टेस्ट मैच में हार के साथ ही 12 साल बाद घर में श्रृंखला खोने के बाद भारतीय टीम कल से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में जीत दर्ज करने के इरादे के साथ वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दावेदारी कायम रखने के मद्देनजर भी भारत के लिए ये जीत जरूरी होगी। बेंगलुरु टेस्ट में भारत के 8 विकेट से हारने के बाद पुणे में दूसरे टेस्ट में 113 रन से बड़ी हार से बेशक न्यूजीलैंड का मनोबल ऊंचा होगा, लेकिन भारतीय टीम वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि टीम के सामने 24 साल के बाद घरेलू श्रृंखला में क्लीन स्वीप से बचने की चुनौती भी होगी। भारतीय टीम को इससे पहले फरवरी मार्च 2000 में दक्षिण अफ्रीका से दो टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। ये पहला मौका था जब भारत को सीरीज के हर टेस्ट में हार झेलनी पड़ी थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही कमजोर फॉर्म से जूझ रहे हैं, और इसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा है। टीम को दोनों बल्लेबाजों से पुरानी फॉर्म की जरूरत होगी। इसके अलावा टीम को सरफराज खान से भी फिर से शतकीय पारी की उम्मीद होगी। यशस्वी जायसवाल भी श्रृंखला में भारत के लिए अर्धशतक लगाने वाले चार बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनके साथ ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल को भी अपना योगदान देना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर कौन सी टीम गेंद और बल्ले से अपना कमाल दिखाती है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन।
शबाब, कल श्रृंखला का अंतिम मैच शुरू हो रहा है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में जाना। क्या भारतीय टीम लय पकड़ेगी और एक जीत के साथ सीरीज समाप्त करेगी, या फिर न्यूजीलैंड के 3-0 से श्रृंखला न्यूजीलैंड अपने नाम करेगी?
देखिए, अभी तक भारत में जो टेस्ट मैच खेले गए, जो श्रृंखलाएं खेली गई, उसका इतिहास ये है कि 3 या उससे ज्यादा की जो टेस्ट श्रृंखला अभी तक खेली गई है बायलैटरल सीरीज, उसमें भारत क्लीन स्वीप अभी तक हुआ नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारत अपनी धरती पर न्यूजीलैंड से सीरीज हारा नहीं था इससे पहले
जी।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वानखेड़े की जो पिच है वो भारतीय स्पिनरों के लिए तो साजगार होगी ही। एजाज पटेल एक ऐसा नाम है जो 2019 के दौरे पर आए थे, इस समय न्यूजीलैंड के टीम में एक त्रुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। 19 विकेट आपको याद होगा, 14 विकेट माफ कीजिएगा, जिसमें एक पारी में 10 विकेट भी शामिल था।
बिल्कुल,
तो वो उन पर नजर रहेगी, मतलब सेंटनर से ज्यादा वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। और रही भारतीय टीम की बात, तो भारत तो हमको लगता है कि 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर के साथ उतरेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आकाशदीप की जगह सिराज की वापसी हो सकती है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि आकाशदीप से वैसे भी ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं गई थी।
अच्छा, एक सवाल ये है, बल्लेबाजी पर भी कुछ और हम बात करेंगे। शबाब, वानखेड़े स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या ये स्पिनर्स को मदद पहुंचाएगी?
देखिए, वैसे देखा जाए तो समुद्री तट से काफी करीब है ये वानखेड़े स्टेडियम, तो तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा फायदा तो मिलता है, यानी शुरुआती दिनों में और पहले सत्र की अगर बात की जाए। लेकिन यहाँ के जो विकेट है दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए, फिर उसके बाद स्पिनर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी पैदा करते हैं, चाहे किसी भी टीम के हों। और भारतीय स्पिनर्स ने तो हमेशा अच्छा प्रदर्शन वानखेड़े में किया है, और जिस एजाज पटेल की बात, जिस 14 विकेट की बात हम कर रहे हैं, उस इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत ने आसानी से इस टेस्ट मैच को जीत लिया था। तो भारत की नजर निश्चित रूप से, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी बताया गया है, कि श्रृंखला में वापसी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने की। स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है, और वो जिस तरह से आज बांग्लादेश को चटगांव में हराया है दक्षिण अफ्रीका ने पारी के अंतर से, तो दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में अब चौथे नंबर पर आ गया है। न्यूजीलैंड था पहले, वो पांचवें नंबर पर चला गया। तो अब भारत के पास बचे हैं कुल मिलाकर छह टेस्ट मैच
जी,
एक न्यूजीलैंड से श्रृंखला का अंतिम टेस्ट मैच और पांच टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं।
बिल्कुल,
तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए 3-2 से वहां जीतना होगा और ये टेस्ट मैच तो जीतना ही पड़ेगा। तो ये काम बहुत मुश्किल है, या फिर दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भारत को निर्भर करना पड़ेगा।
मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है।
बिल्कुल,
क्रिकेट का जहां तक प्रश्न है, आपने मिचेल सेंटनर की बात की और एजाज पटेल का आपने जिक्र किया कि बेहतरीन गेंदबाजी के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन वो कर चुके हैं। इन दोनों के आक्रमण से बचने के लिए भारत की रणनीति क्या होगी शबाब?
देखिए, मिट्टी बदल गई है, रेड सॉयल, यहाँ पे ब्लैक सॉयल था, तो दोनों में फर्क है। हो सकता है पहले टेस्ट में आपको याद होगा मिचेल सेंटनर को नहीं खिलाया गया था, उन्हें सिर्फ पुणे के लिए रखा गया था। मुंबई में क्या रणनीति के साथ न्यूजीलैंड की टीम उतरती है, मुझे ऐसा लगता है स्पिनर्स के रूप में उसके जो मुख्य गेंदबाज होंगे वो जाहिर सी बात है कि एजाज पटेल होंगे, चूंकि पिछले दौरे पर काफी शानदार गेंदबाजी की थी। तो भारतीय बल्लेबाजों को काफी संभल कर खेलना पड़ेगा, खास करके हमारा जो टॉप ऑर्डर जो गड़बड़ा रहा है।
जी जी,
यशस्वी जायसवाल को अगर छोड़ दें तो
विराट
है,
रोहित
है, और रोहित शर्मा
टॉप ऑर्डर है,
प्रदर्शन है उसको, उसकी अगर वापसी नहीं हुई फॉर्म में तो परेशानी यहां भी हो सकती है।
सही कहा आपने। और अच्छा, भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो किन खिलाड़ियों पर हमारी नजर और उम्मीदें रहेंगी, अगर बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात करें, दोनों विभागों की अगर बात
देखिए, इस श्रृंखला में आशा के अनुरूप सब कुछ हो रहा है, इसलिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा था वो यह रहा था कि भारत को भारत की धरती पर हराना आसान काम नहीं था, और सब लोग ये समझ रहे थे कि आसानी से सीरीज भारत जीतेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं।
बिल्कुल,
दोनों टेस्ट मैच हम हारे और तीसरे टेस्ट मैच में रणनीति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं, उलट फेर कुछ बैटिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट की यह भी राय है कि रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए और जायसवाल और गिल को ओपनिंग करनी चाहिए, तो इस तरह की तब्दीली हो सकता है देखने को मिले। तेज गेंदबाजों में भी रिप्लेसमेंट ही हो सकता है, लेकिन मैदान के अंदर आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेगी, चूंकि न्यूजीलैंड अपर हैंड है, सीरीज उस अपने नाम कर चुकी है, और भारत को इस टेस्ट मैच को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल क्वालिफिकेशन के नजरिए से खेलना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं, हांगकांग सिक्सेस की बात करते हैं शबाब। हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। रॉबिन उथप्पा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। 12 टीमों के टूर्नामेंट में भारतीय टीम में केदार जाधव, मनोज तिवारी, स्टुअर्ट बिन्नी, श्रीवत्स गोस्वामी, भरत चिपली और शहबाज नदीम जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अपना पहला मैच कल पाकिस्तान से होगा। भारत और पाकिस्तान के अलावा हांगकांग, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, यूएई, बांग्लादेश और ओमान और साथ में श्रीलंका की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा। शबाब, कल से हांगकांग सिक्सेस का आगाज हो रहा है और पहले ही मैच में भारत का सामना पाकिस्तान से है, किसको संभावित विजेता आप मान रहे हैं?
देखिए, एक नए प्रारूप की यह प्रतियोगिता है, हालांकि पहले से खेली जा रही है, लेकिन यहां हांगकांग में 6-7 साल बाद ये टूर्नामेंट हुआ। ये 5 ओवरों का मैच होता है जिसमें हर एक गेंदबाज को एक ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ती है। पूरी टीम जो बनती है उसमें सिर्फ एक विकेट कीपर होता है और बैटर 31 रन से ज्यादा बना नहीं सकता इस मैच में, यानी 31 रन के बाद उसे रिटायर होना पड़ता है, और जब अंतिम बल्लेबाज रहता है तो रनर्स की हैसियत से बल्लेबाजी कर सकता है। तो बहुत ज्यादा रोमांच इसमें इसलिए हो जाता है कि समय कम होता है, उसमें तेजी के साथ रन्स बनते हैं, और भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम की अगर तुलना की जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय टीम में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी ज्यादा हैं। तो अब 5 ओवर में मुकाबला कैसा होगा इसके बारे में कोई पहले से कयास करना तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये हांगकांग ने इस तरह का टूर्नामेंट करके काफी दिलचस्प बना दिया है क्रिकेट को।
सही कहा आपने, और इसमें ये भी अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि इस फॉर्मेट में चैंपियन कौन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारत ए की। भारत ए की टीम आज ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनधिकृत टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली पारी में 107 रन बनाकर आउट हो गई। ब्यौरा दे रही है हमारी सहयोगी जया भारती।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने गए अभिमन्यु ईश्वरन और नीतीश कुमार रेड्डी को यहां की उछाल भरी पिच पर संघर्ष करना पड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ए के तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट ने 11 ओवरों में 15 रन देकर और 6 विकेट लेकर अपने प्रथम श्रेणी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। पिच से कितनी उछाल और मूवमेंट मिल रहा था इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विकेट कीपर जोश फिलिप्स ने 5 कैच लपके। भारत के केवल 3 बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे, इनमें देवदत्त पडिक्कल ने सर्वाधिक 36 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ए टी की टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 99 रन बनाए थे। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने 30 रन लेकर 2 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णा ने 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम को अगर इस 4 दिवसीय मैच में वापसी करनी है तो पहले उसके गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया की टीम को कम स्कोर पर रोकना होगा और फिर उसके बल्लेबाजों को दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इस मैच में सबकी निगाहें ईश्वरन और नीतीश पर टिकी है क्योंकि इन दोनों को 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
शबाब, पहली पारी के प्रदर्शन के आधार पर बात करें तो ये स्कोर अच्छा नहीं कहा जा सकता।
नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जो ऑस्ट्रेलिया का जो कंडीशन है और वहाँ का विकेट उछाल वाला होता है, तेज होता है, वहाँ पर हमारे बैटर्स अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन उनके लिए परफॉर्मेंस ज्यादा, मतलब नतीजे से ज्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि पहले हमारे जूनियर क्रिकेटरों को विदेश में जाकर के खेलने का एक्सपोजर मिलता नहीं था
जी।
लेकिन हाल के दिनों में इस तरह का आयोजन किया गया है, ये एक अच्छी बात है। जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे वो उन्हें पता चलेगा कि भारत के बाहर भी किस तरह का कंडीशंस होता है, वहां कैसे खेला जाता है, वहां की पिचें कैसी हैं। तो अनुभव के हिसाब से देखा जाए तो यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है और इसी में से कुछ खिलाड़ी सीनियर टीम में तो निश्चित रूप से
सही बात है। हमारे
दो तो हैं।
हाँ, दो तो हैं, उनके हम बात करेंगे, लेकिन केवल दो ही बल्लेबाज हमारे दहाई अंकों को छू सके।
उसका कारण यह है कि वहां की जो विकेट की जो सीम और जो तेज रफ्तारी है उसका अंदाजा नहीं लगा सके हमारे बैटर।
अच्छा, आपने बात की अभिमन्यु ईश्वरन की और नीतीश कुमार रेड्डी की, तो जिम्मेदारी कहीं अधिक बढ़ गई है क्योंकि आगामी टेस्ट श्रृंखला में दोनों का चयन किया गया है। शबाब
जी, हाँ बिल्कुल। अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन इन दोनों का रहा है तो उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि यदि सीनियर्स टीम में अंतिम एकादश में मौका मिलता है, हालांकि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर क्या परिस्थिति होती है, तो इनको पहले से इसलिए भेजा गया कि दो खिलाड़ियों को कि वो वहां के कंडीशन से पूरी तरह वाकिफ हो जाएं।
आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली 4 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन और गेराल क्वेटजी को टीम में शामिल किया गया है। दोनों ही खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के घरेलू T20 चैलेंज टूर्नामेंट का हिस्सा थे। हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर और केशव महाराज को भी एडेन मार्करम की कप्तानी वाली टीम में शामिल किया गया है, जबकि केगिसो रबाडा को श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है। डरबन का किंग्समीड स्टेडियम 8 नवंबर को श्रृंखला के पहले मैच की मेजबानी करेगा। तो इस तरह से एक और मुकाबला बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम कुश्ती की बात करेंगे
जी।
और बात कुश्ती की, भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में हुए सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। मानसी ने कल रात कनाडा की लॉरेंस ब्यूरेगार्ड को 5-0 से हराया। जापान की रिसाको किंजो ने स्वर्ण पदक जीता। मंगोलिया की सेरेन चिमेड सुखी ने रजत पदक जीता, जबकि जर्मनी की एलेना हेइक ब्रुगर ने मानसी के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 92 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के संदीप एसमान आज रात रैपचेज राउंड में स्लोवाकिया के बातिर रेक साकुलोव से मुकाबला करेंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से शुरू होगा, यानी कुछ देर के बाद ही शुरू होगा। तो यहां से अपनी बात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। कुश्ती में हम निरंतर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं शबाब, मानसी की जीत नए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में कितनी सहायक सिद्ध होगी?
बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पूर्व विश्व विजेता को हराया था शुरू में ही, आपको याद होगा
जी,
तो सनसनी फैला दी थी। हालांकि सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन कांस्य पदक अंततो गत्वा उन्होंने देश के लिए जीता और देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है दिवाली का, निश्चित रूप से। और मानसी जो रोहतक के छोटू राम अखाड़े की पहलवान है, झज्जर की मूल रूप से रहने वाली हैं और इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, तो ये जीत जो है निश्चित रूप से भारत की
पहलवानों के लिए
पहलवानों की जीत है और इससे आगे हौसला मिलेगा।
अच्छा, पुरुषों में आज रात भारत के संदीप मान रैपचेज राउंड में स्लोवाक पहलवान से मुकाबला करेंगे, क्या कहते हैं शबाब, जीत हमारी होगी?
होनी तो चाहिए, चूंकि भारतीय पहलवानों के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं होता है, लेकिन जो प्रतिद्वंदी पहलवान है वो भी काफी अच्छे रेटिंग वाले हैं।
भारत की सीनियर टीम ने कनाडा को 168-84 से हराकर ब्यूनस आयरस में चल रहे विश्व ब्रिज खेलों के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम में कमल मुखर्जी, विभास तोदी, बादल दास, प्रणव वर्धन, अरुण बापट और रवि गोयनका शामिल हैं। गिरीश विजूर कोच और गैर वरीय खिलाड़ी हैं। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शबाब अनवर, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
आपका भी।
और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए, नमस्कार।